ओम आज है प्रातः क्लास 21 मार्च 1968। बात समझाते हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तुम बच्चों को ये नॉलेज अच्छी तरह से मिली है क्या? क्या नॉलेज? कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं और आत्मा जिन पांच तत्वों के संघात शरीर में बैठी हुई है वो शांत स्वरूप नहीं हो सकते। कब तक? जब तक शांत स्वरूप आत्मा उसमें विराजमान न हो। हम आत्माएं मूल वतन की रहने वाली है और ये पांच तत्व मूल वतन ही रहने वाले हैं? नहीं, ये तो इसी दुनिया के हैं और इनमें विघटन होता रहता है। इनका स्वरूप क्षण क्षण बदलता रहता है, सेकंड बाय सेकंड परिवर्तन होता रहता है। और आत्मा, आत्मा तो सदैव अविनाशी है। आत्मा के घर को ही शांति धाम कहा जाता है। यहां आकर के आत्मा पार्ट बजाती है। शांति धाम में कोई पार्ट नहीं बजा सकती। अभी बाप कहते हैं पवित्र बनो, क्योंकि तुमको वापस जाना है। लिखा हुआ भी है कमल फूल समान पवित्र बनना है। पावन कोई दूरबाज खुशबाज होकर के बनने की बात नहीं है। कैसा पावन बनना है? कीचड़ में जैसे कमल रहता है और कीचड़ से अलग किया जाए तो उस पर एक ही भी बूंद कीचड़ की ठहरती नहीं है। ऐसे ही आत्मा इस कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी निर्लिप्त बनी रहे। कोई लगाव झुकाव नहीं। तो कमल फूल समान का अर्थ भी बताया, कमल फूल बहुत बच्चड़े वाला होता है, किंग फ्लावर कहा जाता है। जैसे राजा होता है, सारी प्रजा उसके बच्चों के समान है। प्रजा का एक एक सदस्य उसका बच्चा है। राजा के लिए उसका राज्य बहुत बड़ा परिवार है। तो कमल फूल से तुलना की जाती है, फिर भी बाप कहते हैं मां में कम याद करो। फिर भी माना, अगर ऐसी स्टेज नबी बनी है कमल फूल समान पवित्र रहने की, तो बनाने के लिए क्या करो? माम एकम याद करो, तो ऐसी स्टेज बन जाएगी। कोई दूजम याद करेंगे तो है? क्यों? जो नहीं बनेगी, एक ही किंग ऑफ फ्लावर होगा क्या? दूसरा भी तो कोई किंग ऑफ फ्लावर हो सकता है। उस दूजम को याद करेंगे तो हमारी वैसी स्थिति नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि सब नंबरवार फूल होते हैं, एक जैसे फूल कोई हो ही नहीं सकते। बाप आकर बच्चों को ही कहते हैं, बच्चे समझते हैं, बाबा इसमें आकर हमको समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं ये जो भी सारी दुनिया है ये सभी है ही गृहस्थ व्यवहार की। क्या दुनिया में जो पेड़ पौधे हैं वो निवृत्ति मार्ग वाले हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाले?
प्रवृत्ति मार्ग वाले।
पेड़ पौधे भी प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, जल जीव जंतु सब प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, सब की गृहस्थी है, गृहस्थ व्यवहार से ही ये दुनिया चलती है। निवृत्ति मार्ग वालों से ये दुनिया चलती नहीं है, सारी दुनिया गृहस्थ व्यवहार की है और सभी को पार्ट बजाना है। सन्यासी भी पैदा कहां से होते हैं? गृहस्थियों से ही पैदा होते हैं, फिर शरीर छोड़ते हैं तो कहां जाते हैं? गृहस्थियों के ही यहां जाकर के जन्म लेना पड़ता है। तो सभी को पार्ट बजाना है। अभी बाप कहते हैं पवित्र बनो, क्या मतलब? पवित्र बनो का मतलब गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी बुद्धि से उपराम हो जाओ। गृहस्थ व्यवहार वालों को ही क्यों कहते हैं? क्योंकि जो गृहस्थ व्यवहार वाले हैं वो ही संसर्ग संपर्क में जास्ती आते हैं, तो जास्ती गिरेंगे भी कौन? वो ही गिरते हैं। परंतु अभी तक गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिला था, और अभी बाप मिला है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है और बड़े से बड़ा गृहस्थी है। बाकी कुमार कुमारियां तो पवित्र रहती ही हैं, परंतु बाप कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर के पतित हो। तुम हुआ नहीं है, यह है नहीं, तुम पतित हो। ऐसे क्यों? तुमने जो 84 जन्म लिए हैं और सारी सृष्टि के बीज बन करके रहे हो, सारी सृष्टि के जैसे तुम पूर्वज हो, तो जाति जन्म किसने लिए? तुमने ही लिए, तो तुम जन्म जन्मांतर के पतित हो। मनुष्य सिर्फ इससे जन्म की हिस्ट्री को जानते हैं, कि हमने बहुत पतित काम किए, बताते हैं क्योंकि अंदर में खाता है हमने ये पाप किए हैं, हम बहुत पाप आत्मा हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी अकेले की बात नहीं है, सभी मनुष्य मात्र महान पापात्मा है, इतने जन्म पापात्मा होकर के रहे हो, उसमें भी तुम बच्चों को तो खास कहते हैं, शुरू से लेकर सबसे जास्ती माया का पसारा तुम्हारे ऊपर होता है, तब से तुमने पाप शुरू किए हैं और जन्म जन्मांतर के पाप हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हो, ये है ही पापात्मों की दुनिया, और वो है पुण्यात्माओं की दुनिया। वो हमारे कौन सी है? सती को त्रेता, वो है पुण्यात्माओं की दुनिया और ये है द्वापर कलयुग पाप आत्माओं की दुनिया। क्यों? सतयुग त्रेता वाली देव आत्माएं द्वापर कलयुग में आकर जन्म नहीं लेती क्या? जन्म तो लेती है लेकिन उनकी संख्या बहुत थोड़ी होती है, और जो द्वापर से उतरने वाली आत्माएं हैं उनकी संख्या बहुत जास्ती होती है। वो सात पापात्माएं हैं, जन्म ही कहां लेते हैं आकर। द्वापर से जो ऊपर से आत्माएं उतरती हैं वो कहां जन्म लेती है? है? पाप की दुनिया में जन्म लेती है या पुण्य की दुनिया में जन्म लेती है? पाप की दुनिया में जन्म लेती है। जिसका जन्म ही पतित पने से हो वो पावन कैसे हो सकता है? देवताएं तो पवित्र थे, उनकी दुनिया ही पवित्र थी, जो आत्माएं परम धाम से आती थी वो भी पवित्र थी, उनका जन्म ही कैसा गर्भ जग गाया जाता है, है? गर्भ महल गाया जाता है, और द्वापर युग से जो भी आत्माएं उतरती हैं सब को गर्भ जेल, मतलब पहले जन्म में दूसरे शरीर में प्रवेश करती हैं तो भी उसे गर्भ महल कहेंगे, बुद्ध रूपी क्षेत्र में प्रवेश करती है ना, पेट में तो प्रवेश नहीं करती, तो भी उसको गर्भ महल कहेंगे या गर्भ जेल कहेंगे? क्यों? सजाएं तो नहीं खाती, पहले जन्म में द्वापर से जो भी आत्माएं उतरती हैं वो पहले जन्म में सजाएं खाती है क्या? सजा नहीं खाती। फिर गर्भ जेल क्यों कहा? क्योंकि उनको भी संग का रंग लगता है, संग का रंग लगने के कारण एक ही जन्म में नीचे गिर जाती है, गर्भ जेल में जाकर जन्म लेती है। तो ये है पापात्मों की दुनिया। ये बातें बाप बैठे बच्चों को समझाते हैं, बाकी कृष्ण भगवान तो लगता ही नहीं है क्या? कृष्ण भगवान उवाच, कृष्ण की आत्मा जो सृष्टि का पहला पत्ता है वो तो इन बातों को समझा ही नहीं सकता। न वो भगवान है न बाप है, फिर मानेंगे ही क्यों? न वो भगवान है सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण, और न वो बाप है, बाप बीज को कहा जाता है वो तो पत्ता है, तो हम उसको बाप मानेंगे क्यों? बहुत हैं जो मानते ही नहीं हैं। क्या इस दुनिया में भी ऐसे बहुत हैं जो कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं? कौन है? अरे दूसरे धर्म वाले हैं, वो निराकार को मानते हैं, भगवान बाप गॉड फादर। कि साकार कृष्ण को मानते हैं? वो तो निराकार को मानते हैं। हाँ, निराकार के असली स्वरूप को भले जानते नहीं। गीताएं सुनाने वाले गृहस्थी पुरुष भी बहुत हैं, माताएं भी हैं जो बैठ करके गीता पढ़ती हैं, वास्तव में सार की गीता ही है। जितने भी शास्त्र हैं उनमें सार स्वरूप शास्त्र कौन सा है? सब शास्त्रों का ज्ञान का निचोड़ है। ये गीता शास्त्र आदि सभी भक्ति मार्ग में पढ़ते हैं। बाप ने समझाया ये शास्त्र पढ़ना भक्ति मार्ग है, क्योंकि भक्ति मार्ग रावण के अनेक सिरों से आता है और ज्ञान एक बाप से आता है। तो ये शास्त्र पढ़ते तो सभी है ना, ये भी अक्षर पढ़ते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र हो और देह के सभी संबंधों को छोड़ो, ये भी पढ़ता था। कौन? ये ब्रह्मा भी गीता शास्त्र में ये बात पढ़ता था, परंतु समझता कुछ भी नहीं था। इसलिए कहा ही जाता है पत्थर बुद्धि। पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि में फर्क तो होता है ना। क्या फर्क होता है? है फर्क क्या होता है? पारस का संग लगने से परिवर्तन हो जाता है और पत्थर का संग लगने से परिवर्तन नहीं होता है। पत्थर के पत्थर बुद्धि ही रह जाते हैं। कहां के लिए इशारा दिया है? अरे प्रैक्टिकल पार्ट के लिए इशारा दिया। ब्रह्मा के तन में भी शिव बाप आते, आत्मा तो कोई है? ब्रह्मा के तन में पढ़ाने वाली आत्मा कौन है? शिव बाप। और मुकर्रर रथ में भी बाप आते, दोनों में सुनाने वाली पढ़ाने वाली आत्मा तो एक ही है। फिर ब्रह्मा के संग के रंग से पालना लेने से, गोद का प्यार लेने से पति से पावन कोई नहीं बने, इसलिए ब्रह्मा के मंदिर भी नहीं बनते, पूजा भी नहीं होती, मूर्तियां भी नहीं बनती, और शंकर के मंदिर बनते हैं। क्यों? क्योंकि उस स्वरूप के द्वारा परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन पारस करेगा या पत्थर करेगा? पत्थर की बुद्धि होगी तो कुछ बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। पारस बुद्धि होगा तो बुद्धि में बैठेगा। अभी तुम सत्य अर्थात बाप के संग में बैठे हो। जो ब्रह्मा के संग में बैठे थे, बीके नाली ले रहे थे, वो शक्ति बाप के संग में नहीं बैठे थे, बैठे थे ना, तो शक्ति बाप के संग में बैठे थे तो रंग लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए?
माँ का पाठ,
माँ का पाठ, माँ का झूठी होती है। अभी तुम सत्य अर्थात बाप के संग में बैठे हो, बाप के संग में बैठे हो तो सत्य है माना, माँ के संग में बैठे हो तो असत्य के संग में बैठे थे क्या?
नहीं नहीं
सत्य। नहीं 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 परिवर्तन क्यों नहीं हुआ?
भक्ति मार्ग
है,
भक्ति मार्ग,
भक्ति मार्ग था क्यों?
मुझे ना समझा
है? हाँ, ब्रह्मा ने बाप के स्वरूप को खुद ही नहीं पहचाना और तुमने बाप को पहचान लिया तो बाप के संग में बैठे हो, तो नई दुनिया स्थापन होती है। जब बीज बोया जाता है तो पहले पहले एक पत्ते से शुरुआत होती है, ये दो चार आठ दस पत्ते इकट्ठे निकल आते हैं, पहले एक प्रत्यक्ष होता है। तो देखो ये प्रजापिता ब्रह्मा एक है, ब्रह्मा तो अनेक हैं और प्रजापिता ब्रह्मा एक है, फिर है ब्राह्मण एडॉप्टेड कुल मुखवंशावली, वहां ब्रह्मा तो है नहीं, कहां है वहां माने कहां? अरे दुनिया में भी ब्रह्मा नहीं है प्रैक्टिकल में, और अभी तो बी की नॉलेज में भी कहेंगे वहां ब्रह्मा नहीं है, बल अपन को ब्राह्मण कहलाते हैं, कहलाना बात अलग है, परंतु असल में ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्मा की औलाद हो, ब्रह्मा के मुख से पैदा हो तो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण। तो वह ब्राह्मण कुल कहां से पैदा हुआ, कहां से पैदा हुआ? दुनिया वाले जो ब्राह्मण कहते हैं अपन को और बीके वाले जो अपन को ब्राह्मण कहते हैं, उनकी पैदाइश कहां से हो रही है? है ब्रह्मा है उधर, अरे वहां ब्रह्मा मौजूद है, फिर पैदाइश कहां से हो रही है? ब्राह्मण कुल कहां से पैदा हुआ जो ब्राह्मण कहलाते हो? वो तो किसी मनुष्य का नाम नहीं कहेंगे, जिनसे जिनसे भी ज्ञान ले रहे हैं वो क्या ब्रह्मा है? कोई मनुष्य को तो ब्रह्मा नहीं कह देंगे, जैसे जैनी कुल फलाना कुल कहा जाता है, तो वह कोई सच्चे ब्राह्मण कुल नहीं ठहरे। जैन कुल वाले सच्चे ब्राह्मण कुल नहीं ठहरे, जैनी लोग अपने को जैनी कहते हैं, वो किसकी औलाद है? जिन, जित शब्द बनता है इंद्रियों को जीतने वाले को कहा गया है जिन, तो वो जैनी इंद्रियों को जीतने वाले की औलाद है क्या? है वो जिसके बच्चे हैं जहां पैदा हुए उनका बाप इंद्रियों को जीतने वाला है क्या? नहीं, सिर्फ कह देते हैं क्या हम जिन को फॉलो करने वाले, जिन भगवान को फॉलो करने वाले जैनी हैं, तो वह कोई सच्चे ब्राह्मण कुल नहीं ठहरे। सच्चे ब्राह्मण कुल तुम हो। किसकी औलाद है?
प्रजापिता ब्राह्मण।
जिन्न की औलाद। जिन्न को क्या पाठ देते हैं बाबा? सीढ़ी पर चढ़ो और सीढ़ी पर उतरो। जिन्न कहता था हमको काम दो, नहीं तो हम तुम सबको खा जाऊंगा। तो बाबा ने जिन्न को काम दे दिया, क्या? ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो। अरे ये क्या बात हुई? मना बाप की याद अगर निरंतर ठहरती है तो उसमें ऐसी ताकत भर जाती है कि वो आत्मा सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता है। तो तुम हो असल जिन्न की औलाद। जैनी तुम होने चाहिए। उन्होंने तो सिर्फ नाम रख दिया है, क्या? जैनी। भक्ति मार्ग में शिव की औलाद शैव कहते हैं ना, विष्णु की औलाद वैष्णव कहते हैं। कहते हैं, लेकिन क्या वो विष्णु विष्णु की औलाद या शिव की औलाद प्रैक्टिकल में है? ऐसे ये भी जैनी कहते हैं, परंतु जिनकी औलाद तो है नहीं। और तुम प्रैक्टिकल में जिन की औलाद हो। जिन माना इंद्रियों को जीतने वाली की औलाद। इस समय वास्तव में तुम प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्ट क्यों हो? ब्राह्मण हो, मुखवंशावली हो। इनका अर्थ भी कोई समझते नहीं है। किनका? प्रजापिता ब्रह्मा का। प्रजापिता ब्रह्मा का क्या अर्थ हुआ? इस दुनिया की जो भी मनुष्य मात्र प्रजा है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारी मनुष्य मात्र की जो प्रजा है उस प्रजा का पिता। वो तुम्हारी बुद्धि में बैठा है और कोई की बुद्धि में बैठा ही नहीं है। तुम किसको अडॉप्ट करते हो तो वह तुम्हारा बच्चा थोड़े ही है। किसका बच्चा है? तुम किसको अडॉप्ट करते हो तो वह तुम्हारा बच्चा थोड़े ही है। वो अपने बाप का बच्चा है। फिर क्या करते हैं? अडॉप्ट करने वाले उसका नाम बदल देते हैं। यहां भी ऐसे ही है। ये कहां की यादगार चल रही है अडॉप्ट करने की? संगम युग में बाप आते हैं, बच्चों को अडॉप्ट करते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो। बाप भी कहते हैं तुम मेरे बच्चे, बच्चे भी कहते हैं तुम मेरे बाबा। दोनों ही एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, लेकिन कब? जब नाम बदल देते हैं। तो नाम बदल गया? हाँ, बदल गया। ब्रह्मा को अडॉप्ट किया तो नाम दादा लेखराज से क्या पड़ गया? ब्रह्मा पड़ गया। तीन मूर्तियां प्रत्यक्ष होती है तो उनका भी नाम बदल के क्या पड़ जाता है? अरे नाम बदलता है कि नहीं? है जगदम्बा नाम पड़ता है, नाम तो बदलता है ना। शंकर नाम पड़ता है, नाम तो बदल गया ना। तो नाम बदल देते हैं, इससे क्या साबित हुआ? कि अडॉप्शन पक्का हो गया, तो तुम भी रुख वंशावली हो, तुम्हें समझ मिली है बरोबर हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं। ब्रह्मा को मुखवंशावली नहीं कहेंगे क्या? क्यों क्यों नहीं कहेंगे? ये क्या बात हुई है? अरे ब्रह्मा ने बाप को पहचाना क्या? ब्रह्मा ने तो बाप को पहचाना ही नहीं, तो ब्रह्मा को मुखवंशावली कैसे कहेंगे? ब्रह्मा को फिर रथ कहा जाता है। क्या रथ तो है लेकिन उनको ब्रह्मा मुखवंशावली नहीं कहेंगे। तुम ब्राह्मण को ब्रह्मा मुखवंशावली कहेंगे? फिर क्यों लगा दिया यहां है? ब्रह्मा को फिर रथ कहा जाता है। कौन सा रथ? नहीं टेम्परेरी रथ का गायन थोड़े ही है। जिस रथ का गायन है उसको तो कहते हैं गंगा लाई भागीरथ। भागीरथ कैसे होता है, क्या होता है, किसको भी पता नहीं है कैसे होता है। अरे भाग्यशाली रथ कैसे होता है? अरे दुनिया में भाग्यशाली किसको कहते हैं? अरे कोई को भाग्यशाली कहते हैं कि नहीं? कोई को भाग्यशाली कहते हैं, कोई को कहते हैं दुर्भाग्यशाली है? जो ये तो समझाना पड़े ना फिर ऊंचते ऊंच बात को है।
धनवान
बहुत धनवान हो
उसको भाग्यशाली,
उसको भाग्यशाली कहते हैं। अच्छा और बहुत जनवान हो
उसको भी कहते हैं,
उसको भाग्यशाली नहीं कहते? उसको भी भाग्यशाली। और जिसके घर में बहुत मेहमान आते हो उसको भी भाग्यशाली कहते। तो भागीरथ कैसे होता है, क्या होता है, ये दुनिया में किसी को पता नहीं। तुमको तो
पता है
क्या कि भाग्यशाली रथ वो है जिसके घर में बहुत मेहमान आते हो। दुनिया में इतने मेहमान और किसी के घर में नहीं आ सकते। फिर भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के बैल आदि के चित्र बनाए हैं। कितना श्रृंगार करते हैं, जैसे वह मुसलमान घोड़े की सवारी दिखाते हैं, हुसैन का घोड़ा, ये फिर बैल की सवारी दिखाते हैं। कौन? हिंदुओं में देखा बैल? नहीं देखा? अरे मुसलमानों का तो मिसाल दिया, मुसलमानों में काय की सवारी दिखाते हैं? हुसैन का घोड़ा बहुत श्रृंगार करते हैं। और यहां हिंदुओं में बैल का श्रृंगार करते हैं। देखा कि नहीं देखा? क्या देखा, क्या श्रृंगार करते हैं?
सजाते हैं उसको
है?
सजाते हैं उसको
है? कैसे सजाते हैं? फूलों से? नहीं कैसे? इसका मतलब देखा ही नहीं। देखा तो कैसे सजाते हैं?
झूला डालते हैं ऊपर, नया कपड़ा लगा झूला
डालते हैं, झूला डाल देते हैं,
पेंटिंग करते हैं उसको
है?
सिंह को पेंटिंग करते हैं उसकी,
सिंह
इधर महाराष्ट्र में पोंगल
پونگل کیا ہوتا ہے؟ بیل کی جھول، کپڑے کی جھول ڈالتے ہیں، وہ تو گھر گھر میں جانور پالتے ہیں، سردی پڑتی ہے تو جھول ڈال دیتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہوئی. اور کوئی بات ہے؟ نہیں. ہاں گھنگرو انگرو تو کہیں لگاتے ہیں کہیں نہیں لگاتے، لگاتے ہوں گے، وہ بھی بات نہیں. اصلی بات تو بتائی نہیں جائے کوئی، دیکھا سب نے. ارے بیل کو سجا کر کے گاؤں گاؤں میں، دیہات دیہات میں، شہر شہر میں گھماتے ہیں، دیکھا نہیں؟ کیا دیکھا؟ ہاں وہ نندی بیل ہے تو وہ کیا سجاتے ہیں؟ ارے کوڑیاں ہی کوڑیاں لگاتے ہیں. اس جھول میں کیا لگاتے ہیں؟ سینکڑوں کوڑیاں لگا دیتے ہیں. کہاں کی یادگار؟ سنگم کی یادگار ہے. اس بیل میں ڈھیروں کوڑیاں لگا دیتے ہیں. یہ کوڑیاں کس بات کی یادگار ہے؟ ہاں کوڑی سامان جو جیون بن جاتا ہے، جن کو کوڑی ہی یاد رہتی ہے، دیہان بھرا رہتا ہے، ایسی کوڑیاں ہی کوڑیاں لگی ہوئی ہیں، اسے کہتے ہیں بیل کی سواری. اور بیل بھی کیسے کیسے بناتے ہیں، جس کو جو آتا ہے سو کرتے رہتے ہیں بھکتی مارگ میں. اب یہ تو بچے جانتے ہیں، اسے کلیگی پرانی دنیا کا وناش ہونا ہے. کیا بات کس کی ہو رہی تھی؟ برہما کی بات نہیں ہو رہی تھی، پرجاپتا کی بات ہو رہی تھی. بات کس کی ہو رہی تھی؟ پرجاپتا کی. پھر پرجاپتا تو ٹھیک ہے، مکھوانشاولی ہے تو پرجاپتا ہے، پرنتو برہما کو مکھوانشاولی نہیں کہیں گے. یہی بات چل رہی تھی نا. تو بیل کون ہوا؟ پرجاپتا کون ہوا؟ اور شیو کون ہوا؟ برہما بیل ہوا، شیو بیل پر سواری نہیں کرتا. شیو کس پر سواری کرتا ہے؟ شنکر پر سواری کرتا ہے. مانا شیو آئے گا تو جانوروں کو نہیں سمجھاوے گا، جانور میں پرویش کر کے اس کا سچی پریورتن کا کاری نہیں ہے. شیو آتا ہے، بھگوان آتا ہے تو گیان سناتا ہے، اور گیان بیل سمجھے گا یا منشی سمجھے گا؟ منشی سمجھے گا. تو شیو آتے ہیں شنکر میں، جو ساری منشی سرشتی کا پہلے پرجاپتا ہوتا ہے، پتت ہوتا ہے. اور پتت منشی ہے جب گیان سمجھ کے منن چنتن منتھن کرتا ہے تو سوکھم بتن واسی فرشتہ بنتا ہے. فرشتوں میں سب سے اونچا فرشتہ مسلمانوں میں کہتے ہیں کون؟ جبرائیل. زبردست کہتے ہیں مسلمان لوگ کہ جب قیامت ہوتی ہے تو خدا کے تخت کو آٹھ فرشتوں نے اٹھایا. اب یہ تو بچے جانتے ہیں، پرانی دنیا کا وناش کیسے ہونا ہے. منشیوں کی بدھی میں ہے کہ جب کلیگ کی آیو پوری ہوگی تو وناش ہوگا. وہ تو لاکھوں ورس کہہ دیتے ہیں. کاہے کی آئے؟ کلیگ کی آئے بہت لمبی کر دی ہے. تم تو جانتے ہو ابھی یہ پرانی دنیا کا انت ہے. اسکول میں وہ لوگ پھر دو گولے دکھاتے ہیں، یورپ ایشیا کا الگ الگ دکھاتے ہیں، अभी तुम समझते हो ये सृष्टि का गोला तो एक ही है और सारी धरती समुद्र पर खड़ी है। क्या धरती कितना हिस्सा है? धरती तो बहुत थोड़ी है और समंदर बहुत ज्यादा है। फिर कोई कहते हैं पानी में बैल है। क्या पानी के अंदर बैल है? उनके सींग पर सृष्टि खड़ी है। जब थक जाते हैं एक सींग के ऊपर सृष्टि खड़ी है और उस सींग पर वजन पड़ेगा सृष्टि का तो थकेंगे कि नहीं थकेंगे? सींग में दर्द होने लगेगा तो यूं करते हैं और वो सृष्टि एक सींग से दूसरे सींग पर आ जाती है। ऐसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, पहले ऐसे ऐसे करते हैं। जब ऐसे ऐसे करते हैं तो अर्थ के को होती है। अरे यूं करके जब सृष्टि दूसरे सिंह पे ली जाएगी तो कुछ हिलेगी डुलेगी कि नहीं? अर्थ के का आदि होती है। क्या क्या बातें बैठ लिख दी है। क्या अर्थ हुआ? हैं? गपोड़े नहीं है, गपोड़े नहीं। शिव बाप आकर के सुनाते हैं। शास्त्रों में जो सार होता है वो सार की बातें आके सुनाते हैं या बाप भी आके गपोड़े उठा उठा के सुनाते हैं? है? जो शास्त्रों में सार की बातें हैं वो उठा उठा करके इशारे में समझाते हैं। जो इशारे को समझने वाले देव आत्माए बच्चे हैं वो झट समझ लेते हैं। तो क्या समझ आई?
राइट सिंह
है,
राइट सिंह में जब रहता तो सत्य कहता
वो तो ठीक है।
जब हो जाएगी बाद में इधर के सिंह पर आ जाएगा।
राम और कृष्ण ये गॉडफादर शिव के दो सिंह हैं। उसके बैल के सिंह कह लो। क्या ये दो सींग हैं जिन सींग पर शक्ति खड़ी हुई है। राइट से जब थक जाते हैं काम करते करते, धरणी को साधते साधते, अभी कौड़ियों की बात की ना, कौड़ियों का दूसरा नाम क्या है? धरणी। धरणी को साधते साधते जब थक जाते हैं तो दूसरे सींग पर बदल लेते हैं तो क्या होता है? भूकंप। भूकंप होता है। और सच में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, छोड़ा ना, तो ब्रह्मा का साकार स्वरूप जो था वो तो गया और 76 में जो पहला ब्रह्मा है कौन? प्रजापिता। उसकी 100 साल आयु पूरी होती है। तो जब 100 साल आयु पूरी होगी तो वो आत्मा तो निराकारी स्टेज में टिक जाती है, ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है। तो उसका उस आत्मा के लिए कौन सा लोक शुरू हो जाता है?
अमर लोक।
उसके लिए तो अमर लोक शुरू हो गया, मृत्यु होने का सवाल ही नहीं। अनिश्चय रूपी मृत्यु हो ही नहीं सकती। फिर भी ब्रह्मा तो चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? ब्रह्मा तो चाहिए। तो वही ब्रह्मा वाली आत्मा जो 68 में शरीर छोड़ती है वो कोई न कोई माता में प्रवेश कर जाती है। तो सिंह बदल गया ना, पहले एक स्वरूप था फिर दूसरा स्वरूप आ जाता है। और उसे चंद्रमा को दिखाते हैं मस्तक पर धारण किया हुआ। तो देखो शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं। फिर कहते हैं फलाने शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, اور فلانے میں ایسا لکھا ہوا ہے. اب باپ تو کوئی بھی شاستروں پر ریفر نہیں کرتے ہیں, باپ تو کہتے ہیں یہ سب بھکتی مارگ کا بھوسا ہے. اس بھوسے کو تو بدھی میں سے نکال دو, یہ بھکتی مارگ کے شاستر ہیں. 21 مارچ 1968 کی وانی کا دوسرا پیج, ان بھکتی مارگ کے بھوسا والے شاستروں کا تو نام بھی نہ لو, سنو ہی نہیں. Hear no evil. نام نہ لو پھر ادویت وانی میں یہ کیوں کہہ دیا, نہیں مرلی میں کہہ دیا کہ تم مہابھارت بھاگوت اور رامائن کو ابھی ورتمان سنگم یوگ سے ٹیلی کر سکتے ہو, اور ابھی تو بول دیا نام بھی نہ لو. دونوں باتوں میں فرق ہے, نام نہ لو یہ ایک الگ بات, اور ٹیلی کرو یہ الگ بات, اور ٹیلی کر سکتے ہو یہ نہیں کہا ٹیلی کرو. کیا کہا؟ تو اپنی زیادہ ودھتا دکھانا چاہتے ہو تو ٹیلی کر سکتے ہو, لیکن اصلی ڈائریکشن کیا ہے؟ ان شاستروں کا تو نام بھی نہ لو, سنو ہی نہیں. ہیئر نو ایول. تم سمجھتے ہو یہ بھکتی مارگ کے شاستر درگتی کے شاستر ہیں, اس لیے ان کا نام بھی نہ لو. کیوں درگتی کے شاستر ہیں؟
نیچے اتر کے آئے.
نہیں کیوں نیچے اتر کے آئے, کارن ہوگا نا کوئی. کیونکہ ایک کی چیز تو ہے نہیں, یہ شاستر کتنوں کی انیک پرکار کی متی سے بنائے گئے ہیں, ان میں انیک پرکار کی ویچاری بدھی بھری ہوئی ہے. اس لیے بھکتی کو نشکشت بتایا اور گیان کو شیشت بتایا. بھکتی مارگ مردہ باد اور گیان مارگ زندہ باد ہوتا ہے تو نئی دنیا استھاپن ہوتی ہے. اس لیے ان شاستروں کا تو نام بھی نہ لو. ایسا کہنے سے بھی اس بات پر بگڑنے لگ پڑتے ہیں, ارے تم شاستروں کو بھی کاٹ دیتے ہو, بسم کر دیتے ہو, سمجھتے ہیں یہ مسلمان ہے. جیسے مسلمانوں نے آ کے انڈیا میں شاستروں کو بھاڑ میں بھون دیا, پھاڑ پھاڑ کے پھینک دیا, ندیوں میں بہائے دیا, زمین میں گڑوائے دیا, تو سمجھتے ہیں یہ کوئی شاستروں کے ویرودھی ہیں, اس لیے ایسا کہتے ہیں, بگڑ پڑتے ہیں. کوئی پھر ہیں جو ٹھیک ریت سمجھ جاتے ہیں, کوئی نہیں سمجھتے. جن کو سمجھنے کا ہوگا وہ ہی سمجھے گا. کیا کیا بات سمجھنے کی ہے؟ کہ شاستر انیکوں کے لکھے ہوئے ہیں, ریفر کیے ہوئے ہیں, شاستروں کا انٹرپریٹیشن انیکوں نے کیا ہے, اور باپ تو ایک ہے. وہ ایک باپ ہی آ کر کے شاستروں کا سچا اور صحیح انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, اور جو اس کا ویاکھیا کرتے ہیں وہ سب ویاکھیائیں جھوٹی ہو جاتی ہیں. مان لو ابھی کوئی برہمن بچے ہی ہیں اور بابا نے کہا ہے کہ تم شاستروں سے ٹیلی کر سکتے ہو, تو ٹیلی کرنے بیٹھ جائے, مہابھارت کی باتوں کو, بھاگوت کی باتوں کو. تو جب ٹیلی کریں گے, ان کا انٹرپریٹیشن اور ویاکھیا کریں گے, تو ایک ایک بات ان کی ویاکھیا کی صحیح ہوگی یا اس میں کچھ نہ کچھ اپنی مت مکس کر کے رکھیں گے, مکس ہو جائے گا. تو جو سوچ ہو گیا, جو منتھن ہو گیا, وہی رنگ ہو گیا. मनन चिंतन मंथन रंग हो गया तो उस मंथन को जो भी सुनेंगे वो भी रंग हो जाएंगे। इसलिए बोला इन शास्त्रों का तो नाम भी न लो। ये ढेर के ढेर मनुष्य हैं जिन्होंने शास्त्र लिखे हुए हैं, ये शास्त्रों से दुर्गति क्यों हुई है? क्योंकि विविचारी बुद्धि के ज्ञान है, विविचारी बुद्धि का ज्ञान इनमें भरा हुआ है। तुम बड़ों बड़ों नामी ग्रामी से ओपनिंग आदि कराते हो कि वो लोग कुछ समझें, परंतु वो कभी समझेंगे नहीं, क्योंकि उनकी तो अभी राजधानी है ना, वो अपनी राजधानी के नशे में ही रहेंगे। अपनी सावरेंटी के पिछाड़ी बहुत लगे हुए हैं, उनको तो प्रभुता मिली हुई है, कुर्सी मिली हुई है। कहते हैं प्रभुता पाए का ही मदना ही, जिसको कुर्सी मिल जाती है ऊंची उसको मद चढ़ जाता है, मदमाता हो जाता है, अहंकार चढ़ जाता है। तो उन्हों की बुद्धि में ये बातें ठहर नहीं सकेंगी। इसमें तो सभी कुछ भूलना होता है, फिर भी हो सकता है कोई निकल पड़े। जिनको बाप का परिचय मिले और समझ जाए कि अभी तो बाप को ही याद करना है और सबको भूलना है, शास्त्र पढ़ेंगे तो बुद्धि में आवेगा ये शास्त्र जरूर किसी ने लिखा होगा है? जो लिखने वाला होगा वो ऊंचते ऊंचे बाप होगा क्या?
नहीं।
शास्त्र को इंटरप्रिटेशन करने वाला होगा, व्याख्या करने वाला होगा, वो भी तो ऊंचते ऊंचे बाप नहीं होगा। कहते भी हैं कै समझे रवि कै समझे कवि, तो शास्त्र लिखने वाले शास्त्रों में जो कविताएं लिखी हुई हैं, श्लोक लिखे हुए हैं, वो कवि तो अनेकों हुए हैं, वो कवि आज मौजूद हैं भी नहीं। और उन कवियों की लिखी हुई कविताओं को इंटरप्रिटेशन करने वाले बहुत हो गए, तो वो शास्त्र झूठे हो गए या सच्चे हैं? शास्त्र सब झूठे हो गए। इसलिए ये कहावत तो सच्ची है, या समझे कवि या समझे रवि। वो ज्ञान सूर्य भगवान ही इस सृष्टि पर एक आता है तो उन सब शास्त्रों का सार हमको समझाता है। तो एक बाप को ही याद करना है, समझते हैं फिर भी कह देते हैं हमको फुर्सत नहीं, तो समझा जाता है ये मुश्किल ही ठहर सकेंगे। कौन इनके लिए कहेंगे ये मुश्किल ही ठहरेंगे, जिनको फुर्सत ही नहीं। अच्छा अच्छा तो करते हैं, ज्ञान बहुत अच्छा है, ऐसा ज्ञान हमने कहीं सुना नहीं। उनसे कहा जाए अच्छा बहुत अच्छा है तो आओ, तो क्या कहेंगे? हमको फुर्सत नहीं। इसका मतलब हमारे मुंह पे लिप साफ कर दिया, मक्खनबाजी कर दी, लेकिन अंदर से इनको बुद्धि में कुछ बैठा नहीं। ये मुश्किल ही ठहर सकेंगे। दिन प्रतिदिन हंगामा बढ़ता जाता है, पाकिस्तान की लड़ाई, चीन की लड़ाई, ये लड़ाइयां लगती हैं तो फिर बुद्धि उस तरफ चली जाती है। तुमको तो पता है ये तो सभी छोटी छोटी लड़ाइयां हैं। क्या पाकिस्तान से लड़ाई होती है, चीन से लड़ाई होती है, ये सब छोटी छोटी लड़ाइयां हैं। जब विनाश होगा तो बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लगेंगी, फिर ये राजधानी स्थापन हो जाएगी। किन बच्चों की भी डिनेस्टी थी ना, किनकी है? किन बच्चों की डिनेस्टी थी? इन माने कौन? ब्राह्मणों की डिनेस्टी होती है, इन बच्चों की भी डायनेस्टी थी ना, ब्राह्मणों की तो डायनेस्टी नहीं होती, ब्राह्मणों की राजाई होती है क्या? ब्राह्मण अगर राजाई यहां करेंगे तो वहां राजाई उड़ जाएगी क्या? यहां तो कोई भी ब्राह्मण हो, जोनल इंचार्ज हो, सारी इंडिया का इंचार्ज हो, ऑल वर्ल्ड का इंचार्ज हो, उसको किसी के ऊपर ऑर्डर नहीं करना है क्या? यहां राजा ही नहीं चलानी है, क्या करना है? रिक्वेस्ट करना है, क्या आप ये सेवा कर सकते हैं? जब हमारा बाप ही आया हुआ है ओबीडेंट सर्वेंट बनकर, तो हम किसी के ऊपर राजा ही चलाने वाले नहीं है, हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सेवाधारी होते हैं या राजाएं होते हैं? ब्राह्मण तो सेवाधारी होते हैं। तो ये जो बोला है इन बच्चों की ही डायनेस्टी थी ना, कौन से बच्चों की तरफ इशारा किया है? हाँ, लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया, इन बच्चों की भी डायनेस्टी थी ना, तो इसमें भी लिखना चाहिए सूर्यवंशी डायनेस्टी अथवा घराना। इसमें डायनेस्टी अक्षर है ना, ये भी भूल है, देवताओं का घराना था, सिर्फ एक ही नाम देने से दूसरों का पता नहीं लगता है, इसलिए डायनेस्टी जरूर लिखना चाहिए। तुम घराना स्थापन कर रहे हो, माला बनती है ना। अभी बच्चे एक चित्र ले आए हैं जिसमें दिखाया है राजाओं का ताज कैसे छीना जाता है, अभी इसमें तो तुमने सिर्फ राजाओं को दिखाया है, राजाओं का ताज छीना गया ये दिखाया है, प्रवृत्ति मार्ग कैसे समझाया जाए? राजाओं का ताज छीना गया तो निवृत्ति मार्ग वाले राजाओं का ताज छीना गया या प्रवृत्ति मार्ग वालों का छीना गया है? ये तो चित्र ठीक नहीं। वास्तव में पहले ताज किसका छीना गया? जो प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवताएं थे त्रेता के अंत में, उनका ताज छीन लिया गया। राजा का ताज निकल जाता है तो रानी की भी ताज निकल जाती है, इसलिए युगल दिखाना पड़े। जिन्होंने चित्र बनाया उन्होंने सिंगल ताजधारी राजाओं का दिखा दिया है, ताज भी दोनों का गिरता है कब? द्वापर के आदि में, द्वापर के आदि में ताज गिरता है, सिर्फ द्वापर के आदि में ही ताज गिरता है और कोई नहीं गिरता। अरे गिरता है कि नहीं है? शूटिंग पीरियड में नहीं गिरता? अरे वहां स्थूल ताज है और यहां जिम्मेवारी का ताज है। जब द्वैतवादी युग शुरू होता है उसकी शूटिंग होती है तो राजाओं का जो जिम्मेवारी का ताज है पवित्रता की स्थापना करना, वो ताज गिर जाता है। इसलिए सिर्फ राजाओं का ताज थोड़ा ही गिरता है, राजा और रानी दोनों का ताज गिरता है, दोनों का दिखाना चाहिए। क्योंकि कब कोई मेल को समझ में आ जाता है तो उठ पड़ते हैं, कब कोई फीमेल उठ पड़ती है क्या समझ में आ जाता है? है? अरे ये तो जिम्मेवारी के ताज की बात है। जो पवित्रता की जिम्मेवारी, पवित्र दुनिया की स्थापना करने की जिम्मेवारी उठावेगा वो ऐसा ताजधारी बनने की सूची करेगा। तो कब कोई मेल उठ पड़ता है कब फीमेल उठ पड़ती है तो क्यों नहीं दोनों का चित्र हो। दोनों ही डबल से ताज थे वो नीचे उतरते हैं। ये चित्र आदि सभी हैं ही मनुष्यों को समझाने के लिए। जैसे छोटे बच्चे को दिखाया सिखाया जाता है तो किताब में उनको चित्र दिखाते हैं, उनको किताब में ये आवेगा कि फलाने किताब में हाथी था, उस किताब में यह था। अभी तुम जानते हो ये हमारा देवताओं का घर है ना, फिर से स्थापन हो रहा है क्या?
ये देवताओं का घर में फिर से स्थापन
मतलब हमारी प्रवृत्ति मार्ग की राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। दोनों ही पवित्र चाहिए। गीता पाठशाला में एक पवित्र रहता हो और एक अपवित्र रहता हो तो क्या कहेंगे? ताज उतर रहा है या ताज गिर रहा है, वो मिल रहा है? टाई की शूटिंग हो रही है, टाई की शूटिंग कहेंगे हैं? हाँ, ताज गिरने की शूटिंग हो रही है। अच्छा, ओम शांति।